अगली सुबह अद्वैत की गाड़ी रावत मेंशन के सामने आकर रुकी। उसमें अद्वैत के साथ जानवी बैठी थी। अद्वैत ने एक नज़र जानवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, महबूबा थोड़ा हौसला रखना, कहीं अपने प्यारे पति को देखकर तुम इमोशनल ना हो जाओ, वरना इसका खामियाजा तुम्हारी बहन भुगतेगी। अद्वैत की धमकी सुनकर जानवी ने अपनी आंखों में आई नमी को रुमाल से पोंछकर धीरे से कहा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। उसके बाद अद्वैत और जानवी दोनों रावत मेंशन के अंदर आ गए। दरवाजे पर दो बॉडीगार्ड खड़े थे, जिन्होंने सबसे पहले अद्वैत और जानवी की चेकिंग की। जब उन दोनों को लगा कि अद्वैत के पास कोई हथियार नहीं है, तो उसे अंदर जाने की परमिशन मिल गई। हॉल में कल्याण सिंह जी, रजत, अमर, दीक्षांत और त्रिशा मौजूद थे। माही को दीक्षांत ने अपने ऑफिस में उलझा रखा था। उसे घर के माहौल का कोई अता पता नहीं था। अद्वैत स्टाइल से चलता हुआ अंदर आया। उसने व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा था और वो उसमें काफी अच्छा लग रहा था। जानवी ने घुटने तक की लेंथ की रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी और बालों की हाई पोनीटेल बनाई थी। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, जानवी झुककर कल्याण सिंह जी के पैर छूना चाहती है, पर कल्याण सिंह उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। जानवी के हाथ बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। अमर की आंखें तो जानवी को देखते ही भर आई थीं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जानवी के सामने मुंह खोल पाए। उसका गला भर रहा था, जिससे उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो अद्वैत को देखते हुए बोला, मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को इन्वाइट किया था, तुम्हें नहीं। तुम क्यों आए हो? अद्वैत स्टाइल से वहां उन सबके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हारी मोहब्बत का मातम देखने आया हूँ, थोड़े पॉपकॉर्न और मिल जाते तो और मजा आता। ये सुनकर अमर ने गुस्से में जबड़े कश लिए, तो वहीं कल्याण सिंह ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और बहू के बीच लड़ाई करवाने की? मुझे अच्छे से पता है जानवी ये सब नहीं कर सकती है। मेरे इतने सालों का तजुर्बा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जानवी जैसी लड़की किसी को धोखा दे सकती है। अद्वैत ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो हंसी रावत परिवार के हर सदस्य को चुप करा रही थी, सिवाय त्रिशा के। त्रिशा मासूम सी लड़की बन अमर के बगल में बैठी थी। आंखों में छूटे आंसू थे और वो जानवी की तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं जानवी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अमर की उन गुस्से वाली लाल आंखों को देख ले, इसलिए वो भी अपनी पलकें झुकाए बैठी थी। अद्वैत करीब 5 मिनट हंसने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कल्याण सिंह जी, कितने भोले हैं आप। आपको अप टू डेट रहना चाहिए। आजकल का जमाना क्या है आपको पता नहीं है, और जानवी तो महज 19 साल की लड़की है जो इसी जमाने की है। आपके जो पुराने ख्यालाते वाली संस्कारी बहू आप इसे समझते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं है। कुछ पल वहां खामोशी बिखरी रही, जिसके बाद जानवी ने धीरे से कहा, क्या मैं जान सकती हूँ मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है? मुझे जो कहना था वो मैं पहले ही अमर से बोल चुकी थी, और आज भी मैं सबके सामने कहती हूँ, अद्वैत ही मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब मैंने अमर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए किया था। इससे ज्यादा देने के लिए मेरे पास सफाई नहीं है। अमर ने दीक्षांत को कुछ इशारा किया, जिसके बाद दीक्षांत तेज कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में गया और करीब 2 मिनट बाद ही हाथों में एक फाइल लेकर आया। अमर ने वो फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, बीवी, तुमने जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है उसमें 3 महीने लगने वाले हैं, और तुम्हें 3 महीने मेरे साथ रहना है। इसके बाद ही मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, और अगर तुम शेखर हवेली रहोगी तो हमारा डाइवोर्स पूरी जिंदगी नहीं होगा। फैसला तुम्हारा है, 3 महीने के लिए अपने पुराने पति के साथ रहना पसंद करोगी? अमर की जुबान जहर उगल रही थी। जानवी ने पलके उठाकर अमर के चेहरे को देखा और फिर एक नज़र अद्वैत को, जिसका खुद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने सोचा नहीं था अमर ऐसा कुछ कहेगा। उसे लगा था आज के आज वो जानवी और अमर का डाइवोर्स करवा देगा, पर यहाँ वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता था। अद्वैत ने कुछ सोचते हुए टेबल से वो फाइल उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। कुछ पल बाद वो सोफे से उठते हुए बोला, ठीक है, तुम इसे अपने पास लग सकते हो, पर मेरी भी एक कंडीशन है। ये सुनकर अमर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं बिना किसी कंडीशन इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अद्वैत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो? पहले सुनो तो सही कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है तुम्हें 3 महीने के लिए अपनी पुरानी पत्नी के साथ रहना है या नहीं। जानवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। अद्वैत और अमर दोनों इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे जानवी कोई खिलौना हो, जिसके साथ 3 महीने कोई और खेलना चाहता है और उसके बाद कोई और। बड़ी मुश्किल से उसने सोफे से उठकर कहा, जब आपका डिसीजन हो जाए तो मुझे बता देना। इतना बोलकर वो तेजी से रावत मेंशन से बाहर चली गई। बाहर की ठंडी हवा महसूस कर उसने अपने मुंह को खोलते हुए एक लंबी सांस ली। उसके गले में तेज दर्द हो रहा था और आंखें जैसे जल रही थीं। वो वहीं रावत मेंशन के गार्डन में जाकर बेंच पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करते हुए वहां से आती फूलों की खुशबू को महसूस करने लगी। इस गार्डन की शांति को महसूस कर वो अपने अंदर चलते तूफान को रोकने की कोशिश कर रही थी। जानवी ने ऊपर खाली आसमान को देखते हुए कहा, मम्मी पापा, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया इस दुनिया में? अगर आप दोनों यहाँ से जा रहे थे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते। मैं इस दुनिया की बेरहमी और नहीं झेल सकती हूँ। इतना बोलने के साथ ही जानवी की आंखों से गर्म आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए।